ओम शांति। सारे क्लब के अंदर पुरुषोत्तम संगम योग ऐसा युग है जहां पर आत्माओं का परमात्मा बाप से सन्मुख मिलन होता है। इसीलिए तो इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। हम देखते हैं हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा बाप की दो प्रकार की रचना बताई जाती है। एक है ब्रह्मा के मुख वंशावली और दूसरी है ब्रह्मा के संकल्प की सृष्टि। किन बच्चों ने ब्रह्मा मुख से जन्म लिया, किन बच्चों ने ब्रह्मा के संकल्प से जन्म लिया, परंतु है दोनों भी पूरे पूरे बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चे, साकार बाबा। जल्दी से जल्दी सर्व आत्माओं को अपना बनाने के लिए, शिव बाप का बनाने के लिए साकार से आकार बने, क्योंकि बाबा कहते थे देखो बच्चे, सभी बाबा अव्यक्त हुई है, तो बाबा ने कहा तुम्हारी साकारी दुनिया में तो समय का बंधन है, तुम्हारी साकारी दुनिया में शरीर का बंधन है, परंतु आकार वतन में ये किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं। इसीलिए बाबा अव्यक्त बनकर के स्थापना का कार्य बहुत स्पीड से करने के लिए आकार वतन में जाके बैठे। बाबा हम लोगों को साकार में अव्यक्त वतन का जब सुनाते थे और अव्यक्त वतन में अव्यक्त वतन की बात करते थे तो डिफिकल्ट लगता था। जब तक बाबा साकार में था, अव्यक्त वतन में जाना जरा मुश्किल लगता था क्योंकि बाबा सामने बैठा हुआ था, परंतु जब बाबा खुद उड़ करके अव्यक्त वतन में जाके बैठ गया तो जब वही जाके ऊपर बैठ गया तो बुद्धि स्वतः ही सब बच्चों की क्या हो गई, ऊपर लग गई, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता नहीं परंतु ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो हरेक को फरिश्तेपन की स्टेज जो है, संपूर्ण स्टेज जो है उसको प्राप्त जरूर करना है, बाद में ही हम नई दुनिया में जाके देवता बन सकते हैं। इसका अनुभव साकार बाबा ने आकारी बन करके हम बच्चों को कराया। तो आज हम देखते हैं कि शुरू शुरू में जब बाबा साकार में था वो दिन भी बड़े सुहावने थे, तभी भी बाबा हमारे साथ था। आज बाबा आकार में है, ये दिन भी बड़े सुहावने हैं, अभी भी बाबा हमारे साथ साथ है, पर दोनों में अंतर। तो शुरू शुरू में जब हम इस ईश्वरीय मार्ग में आए तो हम तो शुरू में जब मम्मा बॉम्बे में आई तब मम्मा को देख करके मम्मा को मिल करके मम्मा की जीवन मम्मा की दृष्टि वो देखने के बाद ऐसा लगा कि जीवन बनाना होवे तो ऐसा बनाया जाए क्योंकि मम्मा की दृष्टि में इतनी पावर थी जो सामने वाले का जीवन परिवर्तन कर देती थी। पहले से ही लेके हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ कनेक्शन था क्योंकि हमारी लौकिक माता लौकिक भाई भाभी लौकिक बहनें ईश्वरीय ज्ञान में चलती थी तो छोटेपन से ही संपर्क होने के कारण लौकिक माता को पढ़ना नहीं आता था इसीलिए मैं उसको रोज मुरली पढ़ के सुनाती थी पर तोते के माफक तोता जैसा बोलता है वैसा क्योंकि हम मुरली क्या होती है कुछ मालूम नहीं परंतु माँ की सेवा करनी चाहिए इसीलिए सेवा करते थे। वो बोलती थी मेरे को मुरली पढ़ के सुनाओ तो सुना देते थे ये भी एक सेवा। जब खुद को मुरली समझ में आई तो मस्ताने हो गए मुरली के पीछे समझने के बाद मस्ताने होते आज बाबा ने कहा ना मस्ताने हो जाते तो तभी मम्मा ने हमारे से प्रॉमिस लिया था कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करेगी। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ती थी फिर तभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मम्मा अव्यक्त होने के बाद बाबा के साथ मैं मिलने को आई। बाबा ने कहा ना जिसको निश्चय हो जाता है वो एक सेकंड भी बाबा को मिलने के बगैर नहीं रह सकता। तो ये हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि जब हमको ये निश्चय हो गया कि बाबा ब्रह्मा के तन में आया है तो बहुत भारी पड़ने लगा। थोड़ा दिन भी ऐसा लगा कि कभी जाके बाबा से मिले तो हमने साकार बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मेरे शरीर का नाम संतोष है परिचय तो देना पड़ेगा और मुझे आपसे मिलना है। बाबा तुरंत रिटर्न में पत्र का जवाब देते थे तो बाबा का पत्र आया हमारे को कि बच्ची बाबा के पास बहुत सारी संतोष है बाबा भी देखना चाहता है तुम कौन सी संतोष। तो इसीलिए जल्दी बाबा के पास आ जाओ। तो उस समय हम साइंस सेंटर पर जाते थे क्लास में फिर हम ब्रिजिंद्रा दादी के साथ यहाँ मधुबन में आए। तो जब मधुबन में आए तो बहुत उत्कंठा थी देखे तो सही शिव बाबा कैसे आता है ब्रह्मा के तन का कैसे आधार लेता है। तो तभी तभी हिस्ट्री हॉल बना था मम्मा तब अव्यक्त बन गई। तो जब हिस्ट्री हॉल में बाबा सबसे शाम को मिलते थे जब दोपहर के समय ट्रेन पहुंचती थी आने में भी बड़ी तकलीफ होती थी परिवार छोटा था साधन बहुत कम थे इसीलिए हम लोग क्योंकि उस समय ठंडी भी बहुत होती थी आबू में बहुत ठंडी थी क्योंकि जंगली जंगल था मनुष्य तो थे नहीं इतने बर्फ जमती थी और बॉम्बे में रहने वालों को तो बहुत ठंडी ज्यादा लगती है। तो हम लोग इतने बड़े बड़े बिस्तरे लेके आते थे इतना बड़ा बिस्तरा तो ठीक फिर वो पेटियां पहले तो ये बैगें कौन सी होती थी आपको मालूम है लोहे की बैगें होती थी ट्रंकें वो लेके आते थे फिर एडिशन बाल्टी लेके आते थे स्नान करने के लिए याद है ना पुराने भाई बहनों और बाल्टी में सब खाने पीने का सामान ले आते थे, फिर यहाँ आके यूज करते थे। कौन कौन बाल्टी लेके आता था, हाथ ऊपर करो, देखो ये बाल्टी वाले, आपको मजा बताओ। जब भी हम और सीधा भी आना नहीं होता था, अहमदाबाद से ट्रांसफर करना पड़ता था, ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। तो जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म पर आकर के हमारा सामान देखते थे लोग, और हम तो सफेद कपड़े ही पहनते थे, सामान देखते थे, तो लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियां है ना, इनको बिचारियों को घर नहीं है, इसीलिए सारा सामान लेके जाना पड़ता। अभी उनको तो पता नहीं ये क्यों जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता था, सारा प्लेटफॉर्म हमारे सामानों से ही भरा हुआ होता था। तो फिर जब भी मैं पहली बारी बाबा के पास आई, तो बाबा से मिलने के लिए नंबर वार सब मिलते थे, मैं खड़ी रही। तो बाबा ने दादी से पूछा, ब्रिजेंद्रा दादी से, ये किसकी बच्ची है? तो बाबा ने कहा, बाबा ये तो आपकी बच्ची है। तो बोला, आपको गारंटी है ये मेरी बच्ची है? तो वो क्यों गारंटी लेगी? उसने कहा, बाबा ये तो आपको गारंटी लेनी है, मेरे को थोड़ी लेनी है। फिर तो बाबा से मिले, बहुत आनंद आया। पर बाबा ने जब भी मेरे को पहली बारी देखा, तभी कहा कि बच्चे अभी बहुत बड़ी हो गई है, तुमको सेवा में लगना चाहिए। मैं तो कॉलेज में पढ़ती थी, बीए फर्स्ट ईयर में, और वैसे मेरे को लक्ष्य था, मुझे वकील बनना था। तो जब भी मम्मा से मिली थी, तो मम्मा ने कहा कि तुमको क्या बनना है? तो मैंने कहा मेरे को वकील बनना है। मेरे को बोलना, कभी वकील नहीं बनना काले कोट वाला। तो मम्मा ने मेरा लक्ष्य ये कर दिया था, बनना नहीं कभी भी। तो फिर मेरे को देखा, तो बाबा ने कहा, बच्ची तो बहुत बड़ी हो गई है, बच्ची को सेवा में लगना चाहिए। अभी बाबा तो मुझे बड़ा अच्छा लग गया देखा तो, और मैं तो देखने के हिसाब से आई थी। लौकिक में दूसरे और तो सब चलते थे, परंतु हमारा जो लौकिक पिता था ना, उसको बहुत ऑब्जेक्शन था, क्योंकि बाबा आके सारी दुनिया के झगड़े मिटाता है, पर पवित्रता का झगड़ा तो जरूर लगाता है। तो हमारे लौकिक भाई के घर में भी झगड़ा चलता था पवित्रता के कारण, बहन के पास भी झगड़ा चलता था। तो इसीलिए लौकिक पिता को ऐसा लगता था, ये क्या ज्ञान है घर में झगड़े लगाते। तो इसीलिए उसको बिगर बताए हम मधुबन में आए। तो फिर जब भी बाबा ने हमारे को कहा कि मेरे को ऐसा लगा सचमुच में बड़ी हो गई यहाँ आके, तो मेरे को बाबा जब भी देखे तो बोले, तुम अभी बहुत बड़ी हो गई बच्ची, सेवा पर निकलना चाहिए तुम्हारे को। बाबा बच्चों को खड़ा करते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमारे को तो ज्ञान व्यान कुछ समझ में नहीं आता था। बाबा अच्छा लगता था, मम्मा अच्छी लगती थी, दादियां अच्छी लगती, दादियों के साथ भी हमारा बहुत प्यार था। बंबई में तो सारी दादियां भरी पड़ी थी हमारी, तो इसीलिए फिर बहुत अच्छा लगता था उनका जीवन। फिर बाबा ने विश्व रतन दादा को बोला, इस बच्ची को तुम रोज समझाओ, इन चित्रों के ऊपर समझाओ, इसको कोर्स करो। कोर्स वर्स कुछ होता नहीं था उस समय। फिर बाबा रोज रात्रि क्लास में मेरे से पूछते थे, बाबा मुरली चलाते थे, फिर मेरे को क्या समझाया वो मेरे से पूछते, फिर मैं क्लास में सबको बताती थी क्या बाबा के सामने। बाबा देखो कैसा सिखाता था बच्चियों। तो बाबा के सामने मैं सारा बताती थी क्या क्या समझाया, तो बाबा शाबाश भी देता था। तो अभी फिर जब भी जैसा मैंने बाबा को देखा, तो मेरे को ऐसा लगा अभी ये ईश्वर अर्पण अपना जीवन करना चाहिए। तो मैंने बाबा को कहा, एक दिन हुआ, दूसरे दिन मैंने बाबा को कहा, बाबा अभी मैं वापस नहीं जाएगी, मुझे सेवा करनी। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे लौकिक पिता का पत्र चाहिए। अभी वो तो इम्पॉसिबल बात थी, ये बड़ी बड़ी कठिन परीक्षा थी हमारे ऊपर, क्योंकि वो तो कभी पत्र देने वाला नहीं था। तो मैंने कहा बाबा भाई का चलेगा? पत्र बोला नहीं चलेगा। माँ का चलेगा? नहीं चलेगा। बहन का चलेगा? नहीं चलेगा। मैं बोला अभी बाप क्या सख्या देगा पत्र? तो बाबा ने कहा नहीं चलेगा, परंतु हमारी नींद पिट गई कि हमारे को अभी सेवा करनी है, क्योंकि बाबा घड़ी घड़ी हमारे को बोलता था ना बड़ी हो गई बड़ी हो गई। फिर मैंने हिम्मत करके, बाबा देखो कैसी मदद कर, मैंने हिम्मत करके लेटर लिखा लौकिक बाप को कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, समझा, लिखा ही मैंने ऐसा, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ और मेरे को मेरे जीवन का समझ में आता है, मैं समझती हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ, इसीलिए आप मेरे को खुशी से छुट्टी देंगे। अभी पत्र तो मेरा गया, परंतु उसको हिंदी नहीं आता था, पंजाब में रहते थे ना, पार्टीशन के बाद इधर आए थे, उसको उर्दू आता था। अभी उसको पढ़ के कौन सुनावे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, जरा कड़क था बहुत, तो क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था मैं यहाँ आई और सीधा पत्र छुट्टी का आया। तो फिर जो लौकिक भाई ज्ञान में चलता था, उसने हिम्मत किया और उसने उसको सुनाया कि ऐसा ऐसा संतोष का पत्र आया है। ठीक है, इधर मैं इंतजार करती रहती थी पत्र आवे पत्र आवे, और आपको मालूम है उन दिनों में तो पत्र टेलीग्राफ ये वो कुछ बहुत कठिन होता था, पत्र तो बहुत ही कठिन होता था, और तभी हम आठ आठ दस दस दिन रहते थे यहाँ आते थे। तो फिर मैं रोज इंतजार करूं कभी पत्र आवे, कभी पत्र आवे, आया ही नहीं। फिर लास्ट दिन हो गया, मैं थोड़ी निराश तो हो गई कि देखो मेरे को कुछ जवाब नहीं आया। तो फिर हमारा सामान वगैरह सब गाड़ी में चढ़ गया, ब्रिजिंद्रा दादी थी ना, तो गाड़ी मंगाई थी नीचे जाने के लिए, सारा सामान चढ़ गया हमारा। इतने में पोस्टमैन आया तो मेरे को इशु बहन ले आई, बोला ये संतोष तुम्हारा पत्र आया। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं बोला देखूं तो सही क्या पत्र आया। देखा तो उसने लिख के भेजा, भले मेरी छुट्टी है तुम्हारे को, तुम मैं सेवा कर सकती। अरे मेरे को तो स्वर्ग मिल गया, बात मत पूछो। मैं वो पत्र लेके जो भागी भागे बाबा के कमरे में, मैंने कहा बाबा, मैं जाके बैठ गई बाबा के सामने, मैं बोला अभी मैं नहीं जाएगी, ये लो मेरा पत्र। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, उस समय बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम जब, मैं आता हूँ वहां बच्चों से मिलने के लिए। तो मैं आई, बाबा आया तो मैं खड़ी हो गई, मैं बोला बाबा अभी मैं नहीं जाएगी, अभी मेरे को छुट्टी मिल गई, आपने कहा ना बाप का पत्र चाहिए, ये बाप का पत्र। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी तुम बहुत छोटी है। मैं बोला ये तो कमाल हो गई, हाँ बच्चे छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। मैं आठ दिन पहले बड़ी थी, आठ दिन के बाद बड़ी होने के बजाय मैं छोटी हो गई। तो मेरे को बोला नहीं अभी तुम बहुत छोटी हो, मैं सत्रह अठारह बरस की होगी, मैं समझती हूँ कम होगी। तो मैं बोले छोटी कैसे क्या हो गई, नहीं मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी नहीं हुई। तो बाबा ने कहा देखो तुमको बाबा दूर तो नहीं भेज सकता है ना, क्योंकि फिर तुमको याद आवे किसी। मैं बोला नहीं मेरे को कोई याद नहीं आता, आप मेरे को भेजो सेवा के ऊपर। तो बाबा ने कहा अच्छा, फिर बाबा ने कहा अच्छा तुमको, तुम जनक बच्ची के पास जाओ पूना। तो वो दिन और आज का दिन, छुट्टी तो छुट्टी, सदा के लिए छुट्टी मिल गई उन लोगों। फिर तो बहुत सहज बंधन कटे, फिर बीच में लौकिक भाई ने जो ज्ञान में नहीं चलता था, उसने थोड़ी परीक्षाएं तो आती है, उसने परीक्षाएं लिया, परंतु हम तो बहुत मजबूत हो गई थी, इसीलिए कोई बात ही नहीं थी ऐसी। फिर बाबा के साथ बीच बीच में मिलने को आते थे, बाबा के पत्र भी आते थे, तो बाबा मेरे को जब भी देखता था तभी मेरे को सेवा का शुरू से बहुत शौक, तो मेरे को ऐसा लगता था बहुत सेवा करें, पर हैंड्स नहीं होते थे। तो मैं बाबा को बोलती बाबा हमारे को बहुत सेवा करनी है, तो बाबा बोलता था करो ना, तेरे को किसने मना किया। मैं बोले बाबा कोई है नहीं ना हमको हैंड्स दो, बाबा बोलता था अच्छा बाबा तुमको हैंड्स देगा। फिर जाने का समय होगा, मैं बोलेगी बाबा कोई हैंड्स दो ना, पहले दिन बोलेगी बाबा बोलेगा बच्ची देखो मेरे पास यहाँ पपूड़ है, पपूड़ मिट्टू की लौकिक माँ एकदम बुढ़ी, मेरे पास यहाँ पपूड़ है, मेरे पास यहाँ देवी माता है। आप लोगों को देवी माता याद होगी, विष्णु की भाभी, तो ये देवी माता है बुढ़ोड़ी, तुमको चाहिए तो ले जाओ इनको, मेरे पास ये दो हैंड अच्छे। मैं बोलती थी ये क्या करेगी, तो बाबा ने कहा तुम समझती नहीं हो, ये जो है ना ये पांजरापोड़ है मधुबन, ये पांजरापोड़ समझते आप लोग, जो गायें दूध नहीं देती है ना उनको पांजरापोड़ में रखते। तो बाबा बोलता था ये पांजरापोड़ है, ज्ञान जो दूध नहीं देती ना ज्ञान का उनको इधर रख, तेरे को चाहिए तो मेरे पास तो ये है ना। मैं बोल मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद बाबा हमेशा कहते थे मेरे को ऐसे मैनेजर चाहिए जो सब सेंटरों पर चक्कर लगावे और बाबा को आके समाचार देवे। उस समय सेंटर भी थोड़े थे, अभी चक्कर लगाना और समाचार देना मेरा ही ठिकाना नहीं था। मेरे को खुद का ही इतना समझ में नहीं आता था, छोटेपन में और ज्ञान में नए नए आते तो कुछ इतना ज्ञान तो होता नहीं है। पर बाबा पता नहीं क्यों कहता है, समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कहता है। फिर अभी जैसे जैसे सेवाओं में आगे बढ़े, फिर जैसे जैसे जवाबदारियां मिली, तभी समझ में आया बाबा हमारा भविष्य देख के हमको ऐसा बोलता था। तो जैसा कि बाबा ने ये हमको शुरू में वरदान दिया, तो हम तो बाबा के पीछे दीवाने थे एकदम। बाबा बोलते तुम लोगों को दीवाना हो जाना चाहिए, मस्ताना हो जाना चाहिए। बाबा की मुरली चलती थी, हमारे को बड़ा मजा आता था, मैं सामने बैठ कर उधर सुनती थी। फिर बैठ के सब पंच लिखती थी मैं। तो बाबा एक दिन मुरली ऐसा ही बाबा मुरली सुना रहा था, मैं लिख रही थी। बाबा ने मेरे से पूछा बच्ची क्या लिखती हो। मैंने कहा बाबा आप जो बोल रहे हैं ना वो पॉइंट्स लिख रही हूँ। बाबा ने कहा किसके लिए लिख रही हूँ। मैं बोला बाबा अभी जाएगी ना सेंटर पर, वहां जाके सबको सुनाएगी। बाबा ने कहा मैं तेरे को सुना रहा हूँ, तुमने सुन रही हो, तुम उनकी चिंता कर रही हो। तो बाबा विधि सिखाता था, मुरली सुनने की विधि क्या है, कितना एकाग्र होकर के, और बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मुझे सुना रहा है, उस स्थिति में रह के पीछे सुनो। तो बाबा ये पक्का कराता था। बाबा का जो सिखाने का तरीका था ना वो बड़ा वंडरफुल तरीका था, और हम तो उसके पीछे ऐसे मस्ताने थे, जहां जहां बाबा जाएगा उसके पीछे 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 घूमते रहेंगे। कभी किचन में गया तो उधर चले गए, झूले पर बैठा तो वहां जाके बैठ गए, जहां बाबा जाएगा उसके पीछे जाते। तो बाबा हमेशा करेक्शन देता था, परंतु करेक्शन देने का जो बाबा का तरीका था वो ऐसा था। एक बारी हम लोग मधुबन में पार्टी लेके आए थे, तो सब बहने बाबा के कमरे में हम लोग मिलने के लिए गए। तो एक बहन थी, उसकी बहुत अच्छी चप्पल थी, फैंसी। तो बाबा हम जब ये बाबा के कमरे में गए तो बाबा कमरे में नहीं था, बाबा चक्कर लगा, बाबा बैठता नहीं था एक जगह, अभी देखो तो इधर जिधर हवा के माफक घूमेगा। तो बाबा बाहर चक्कर लगाने गया था, तो हम बैठ गए वहां। तो इतने में बाबा आया और दरवाजे में ही खड़ा हो गया। तो हमने समझा पता नहीं क्या हुआ, बाबा क्यों खड़ा है। फिर खड़ा रहा और फिर अंदर आया, बोला बाहर एक बड़ी सुंदर चप्पल रखी हुई है, किसकी है। उस बिचारी को लज्जा आ गई, उसने कहा बाबा मेरी है। बाबा ने कहा बच्ची अभी तुम भाषण करने को जाएगी ना तो लोग तेरा भाषण नहीं सुनेंगे, तेरी चप्पल देखेंगे। वो बिचारी वहीं चप्पल छोड़ के भाग गई फिर बाद में। तो बाबा करेक्शन ऐसा देता था कि सिंपल रहना कितना आवश्यक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं यूज करो, ऐसी कोई भी चीज नहीं पहनो जो औरों का एक्स्ट्रा ध्यान तुम्हारी तरफ जाए। हमने देखा जब ये बाबा साइंस सेंटर पर आए थे, बहुत छोटा सेंटर, बहुत छोटा मकान था। बाबा बालकनी में से कमरे में दो ही कमरे थे उस समय, उस जमाने में तो बालकनी में से कमरे में जावे, कमरे में से हाल में जावे। फिर ब्रिजेंद्र दादी को बोला ये स्थान कभी छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि यहाँ पर वहां बीच में बहुत बड़े बड़े दो हाईवे हैं, बड़े बहुत बड़े रोड है, और उसके बाद सामने उधर बिल्डिंग। तो बाबा ने कहा देखो यहाँ किसी की भी नजर बच्चियों के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो बाबा इतना ध्यान देता था कि मेरी बच्चियों के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए हमने अभी तक वो मकान नहीं छोड़ा है, भले कितना भी पुराना हो गया तो, क्योंकि बाबा के चरण लगे। मम्मा तो बहुत बारी आई वहां माताओं का क्लास कराने के लिए, परंतु बाबा एक बारी आए थे और बोल के गए कि ये नहीं छोड़ना। उसके बाद तो दूसरे भी और काफी फ्लैट लिए। तो बाबा में ये विशेषता थी, बाबा करेक्शन देते थे, डायरेक्शन देते थे, पर बहुत नॉर्मल रीति से देते। एक बारी क्या हुआ, एक बारी मैं एक ग्रुप लेके आई तो एक भाई था हमारे साथ, प्रोफेसर था वो, सरदार जी था, खालसा कॉलेज है वहां पर बड़ा, उसका प्रोफेसर था। वो रिटायर हो गया था, इंग्लिश का प्रोफेसर था, उसको जरा नशा था अपने इंग्लिश बने का। तो उसने मेरे को बोला मेरे को बाबा से पर्सनल मिलना है। तो मैंने बाबा को बताया, बाबा ये उसका नाम हुक्मी चंद था, अभी तो शरीर छोड़ दिया उसने, बूढ़ा हो। तो हमने बाबा को बोला बाबा ये आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा बोला भले लेके आओ बच्ची। जब ये बाबा पत्र लिखता है ना इसमें कुटिया में बैठ के, उस समय लेके आओ। तो मैं उसको लेके गई, बाबा 10:30 बजे बैठता था। तो इसने जब बाबा ने सारा पूछता था बाबा क्या है, सारा परिचय लिया उसका। तो फिर उसके बाद इसने क्या बोला, बाबा मेरी ना अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी रियली उसकी बहुत अच्छी थी। बोला बाबा मेरी ना अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे को आप बोल। बाबा एकदम चुप, बाबा ऐसे देख रहा था उसको, मैंने देखा। बाबा ने कहा बच्चे बाबा को अंग्रेजी पंग्रेजी नहीं चाहिए, बाबा को ऐसी अनपढ़ बच्चियां चाहिए, इन बच्चियों के द्वारा मैं विश्व का कल्याण करता हूं, बाकी मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वो बाहर आया तो उसकी हालत ऐसी हो गई, बोला आज मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को कितना अहंकार था, बाबा ने तो मेरा अहंकार चूर कर दिया, नहीं तो वो समझता था मैं बहुत होशियार हूं। तो बाबा ने एकदम उसको उतार दिया। बाबा हम लोगों की भी परीक्षा लेता था हमारे को, मैंने जब भी बोला मेरे को जाना है, मेरे को बोला बच्चे तुम पढ़ो, डिग्री विग्री ले लो, बाबा को पढ़ी लिखी बच्चियां चाहिए। हमने कहा बाबा वो बहुत आपको मिलेगी, हम अनपढ़ी अच्छी है, हम नहीं जाने वाले। तो बाबा देखता था इनको कितनी लगन है, वो देखता था हमेशा। तो बाबा जो भी बात करता था ना इतनी युक्ति युक्त बात करता था, और सबका सामने वाले का एक्सरे निकाल लेता था। अभी बाबा का देखने का दृष्टिकोण कौन सा था वो हम आपको बता दें। हम लोगों के देखने में और बाबा के देखने में कितना अंतर। एक बारी क्या हुआ, हमारे ग्रुप में एक माता आई थी। वो जो माता थी उस माता का चार बच्चियां थी लड़कियां, कन्नू कन्नू नाम, उसको कन्हैया था, उसको कन्नू बोलते, छोटा बच्चा। ब्रिजेंद्र दादी जो मधुबन से डायरेक्शन आवे उसी पर ही चलना, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट रहती। तो मधुबन से आता था बाबा से मिलने के लिए, आते तो बच्चों को लेके नहीं आना। तो इसने कहा बच्चों को लेके नहीं जाना, तो ये नहीं लेके आई। तो हमेशा सतगुरुवार के दिन रात को खीरनी बनती थी यहाँ। तो गुरुवार का दिन था, रात को खीरनी बनी थी। तो इसके सामने, इस माता के सामने जब ये कटोरी आई खीरनी की, तो इसको लड़के का बड़ा मोह आया, बहुत ही याद आया, जिसने खाई नहीं और सारी रात सोई भी नहीं, और उसको याद करती रही, रोती रही। और सवेरे बाबा मुरली सुनाने के लिए जा रहा था तो सामने आके खड़ी हो गई और रोने लगी। बोला, बाबा मेरे को ना कन्नू बहुत याद आ रहा, मैं इधर खीर नहीं खा रही और उधर क्या पता नहीं उसने क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा। अभी आपको सुनने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगा? हाँ, क्या लगा? तो बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, तुम्हारे को याद आ रहा ना बच्चा। तो बाबा ने एक भाई को बुलाया, बाबा ने कहा इसको जो पहली ट्रेन हो गए ना उसमें इसको बिठा के आओ। और हमारे को, हम, मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा कि ये क्या बोल रही बाबा क्या। तो उसको बाबा ने रवाना किया, उसको टोली दिया, सौगात दिया, उसके बच्चे के लिए भी दिया और उसको रवाना किया। वो वहां से गई, बाबा ने कहा, देखा आपको क्या लगा, कैसी है ये? हाँ, बाबा ने कहा, देखो ये बच्ची कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है। आज बड़े बड़े महारथी भी बाबा से छुपाते हैं, पर ये इतनी सच्ची है, जो इसको जो इसको हुआ वो बाबा को आके सच बताया। बाबा ने उसको बहुत प्यार किया। बोल, तो हम लोगों में, मन चाहताओं में और उसमें कितना अंतर है। हमने देखा वंडर है, मेरे को खराब लग रहा था सुन के और बाबा को इतना अच्छा लगा। तो बाबा की एक एक जो एक्टिविटीज थी ना, शिव बाबा को करण करावन हार स्वामी कहा जाता है ना, तो उसने ब्रह्मा के द्वारा अपने जो गुण हैं, अपनी जो शक्तियां हैं, वो सब कुछ प्रैक्टिकल में करके बताए। और फिर धीरे धीरे ये भी देखा हमने कि कैसे बाबा का अपने ऊपर इतना अटेंशन था, जिसके कारण बाबा अपनी संपूर्णता की स्टेज की तरफ जा रहा है। बाबा जितना प्यारा था उतना न्यारा भी था। जो भी जाते थे ना, रो रो के जाते थे, बाबा को छोड़ने का किसी का मन नहीं होता। और बाबा का प्यार ऐसा था जो हरेक को ऐसा लगता था बाबा मेरे साथ ही ज्यादा प्यार कर। ऐसा नहीं लगेगा आपको कभी भी कि बाबा का इससे ज्यादा प्यार है या इससे ज्यादा, हरेक को यही बोलेगा मेरे साथ बाबा का ज्यादा प्यार, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मेरे साथ ज्यादा प्यार। तो बाबा का इतना निस्वार्थ प्यार और इतना बेहद का प्यार बाबा बच्चों को देता था, जो सारी दुनिया भूल जाती थी, याद भी नहीं पड़ती थी। जो छोटा होवे या बड़ा होवे, जो भी जावे उस वो रो रो के जावे यहाँ से। और बाबा देखो तो आराम से खड़ा है ऐसा, बाबा को कुछ नहीं, जैसा प्यार इतना करेगा और न्यारा भी ऐसा हो जाएगा, डिटेच ऐसा हो जाएगा। फिर बोलेगा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो, विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो, जाओ खुश रहो आबाद रहो। फिर ये भी महामंत्र दे करके भेजेगा। तो इतना मतलब बैलेंस बाबा के पास, हर गुणों का बैलेंस था। गंभीर भी इतना ही था, रमणीक भी इतना ही था, हंसाता भी था, हंसता भी था, और कभी देखो तो इतना ऑफिशियल भी हो जाता था एक। तो हर बात बच्चों को वो सिखाता था। फिर धीरे धीरे बाबा का देखा गया कि हम पहले शुरू शुरू में आते थे ना, बाबा को हम सारा समाचार सुनाते थे, बॉम्बे में बाबा ये हमने सेवा किया, ये किया, ये किया, सारी सेवाएं बताते थे। फिर कोई आता था, चिमनानंद आया, फलाना आया, ये आया, उनका भी समाचार सुनाते थे, बाबा सुन लेते थे। फिर एक बार ऐसा ही, जैसा जैसा बाबा बहुत अंतर्मुखता में जाने लगा ना, तो हम लोग आए थे, तो एक हमारी दादी थी, कौन था पता नहीं, तो उसने बैठ के वहां का समाचार सुनाया बाबा को कि फलाना आया है, फिर उसने ऐसा प्रवचन किया। ये पहले बाबा सुनता था सारा, तो बाबा ऐसा सुन रहा था जैसा सुन ही नहीं रहा। फिर जब उसने बोलना पूरा किया ना, बाबा ने कहा ये सारा बंबई का कचरा इधर लेके आई। अरे वहां से ऐसे भागे हम लोग। बाबा को जैसा कचरा लग रहा था, ये सारा कचरा मम्मी का इधर लेके आए चलने लगा। तो बाबा धीरे धीरे आवाज से परे जाने लगा, तो वो एकदम कॉन्ट्रास्ट मालूम पड़ता था, पहला बाबा और उसके बाद बाबा ने जो पुरुषार्थ करके मेहनत करके अपने अंदर जो शक्ति भरी, जो शांति की शक्ति भरी, उसका अनुभव होता था। बाबा के पास जाते थे हम मिलने के लिए, सोच के जाते थे हमें ये बाबा से पूछना है, ये पूछना है, पर जब भी कमरे में जाते थे चारों तरफ लाइट ही लाइट, इतनी डेड साइलेंस, आपको क्या बता, बहुत एकदम संकल्प भी बंद हो जाते थे, वाणी तो छोड़ो पर संकल्प भी बंद हो जाते थे। बाबा भी दृष्टि देता रहता था, हम भी बैठे रहते थे कितना समय। फिर बहुत समय के बाद बाबा पूछता था, बच्चे कुछ पूछना है कुछ, फिर चले जाते थे उठ, संकल्प एकदम मर्ज हो जाते, ऐसी शक्ति थी बाबा के निर्संकल्प स्थिति में। तो बाबा ने अपने ऊपर इतनी मेहनत किया, जिस मेहनत से बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ, परंतु धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा था ना, वो दिखाई पड़ता था बाबा ने। मैं जब लास्ट नवंबर में, बाबा जनवरी में अव्यक्त बने, मैं नवंबर में बाबा के पास पार्टी लेके आई थी, तो तभी मैंने देखा बाबा के जो नेत्र है ना, वो एकदम डिफरेंट, ऐसा लगता था जैसा ब्रह्मा बाबा नहीं देख रहा है, श्री कृष्ण देख रहा है। आप चित्रों में भी देखेंगे ना, श्री कृष्ण के नेत्र हमेशा अलग होते हैं, मूर्तियों में बहुत आकर्षण वाले होते हैं, और मालूम पड़ता है ये श्री कृष्ण के नेत्र। ऐसा लगा मेरे को, मैं बोला ये तो जैसा श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ रहा है, इनके नेत्र तो ऐसे ही लग रहे हैं। फिर मैंने क्लास में जाके अनुभव सुनाया था वहां, किस बारी मैं गई तो मेरे को ब्रह्मा बाबा के नेत्र तो नहीं दिखाई पड़े, मेरे को तो श्री कृष्ण के नेत्र दिखाई पड़ते। तो जैसा बाबा की वो संपूर्ण स्टेज जो है ना, वो बाबा के चेहरे के ऊपर, बाबा के नेत्रों में आ गई। तभी बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारी सूरत से क्या हुए, बाबा की मूरत दिखाई पड़े। तो बाबा हम बच्चों को जो काम देते हैं वो हमें करना है। ओम शांति।
बने कलम धरती बने सवात चाहे कागज बने गगन तीनों जान चाहे शब्दों से भर जाए ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए तू ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए को भी तेरी पड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया, निराकार शिवली देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों धाम है पाया, भजा तुम्हारे प्यार का, भजा तुम्हारे प्यार का हर दिल पे लहराए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। महान थे स्वर्ग धरा पे बाबा तुमने उतारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान, तेरी उदारता का बाबा तेरी उदारता का पार कोई ना पाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए।